एक नगर में, नगरी है ना, नगरी नगर नहीं कहा गया, नगरी कहा गया, स्त्रीलिंग व्यवहार किया, ये नगरी है राधिका जी, ये बड़ी विशाल नगरी है। जैसे विशाल नगरी में दोनों तरफ में दुकानें, दिल्ली में चांदनी चौक में जाओ देखो दुकान ही दुकान, जिधर देखो आंख झलमल करेगी, सोना जवाहरात और क्या क्या सब दुकानें सब लगी हुई है। जिसको जिस दुकान में जाएगा देख करके जैसे यहां पर ये चीज मिलेगी उस दुकान में जाता है। राधा जी ने दुकान लगा दिया है, कितनी करोड़ों दुकान लगाया है, जिसमें वही कृष्ण की पूजा की वो जो उपकरण समूह सब वो एकदम भरे पड़े हैं। ऐसा कोई उपकरण नहीं जो उनके दुकान में नहीं है, इसलिए वो नगरी नगर में भी वो दुकानें हैं। नगर का अर्थ अब दुकान भी होता है, ये बतलाया द्यु धातु से आपन, आपन माने दुकान, दुकान भी होता है। तो वो नगरी है समूह, एक बार जितनी दुकान है उपकरणों की दुकान है, कौन से उपकरण है, हाव भाव हेला किलकिंचित विक्षोभ विभो और भाव अनुभाव सात्विक इत्यादि के लाख, विषाद दन्य ये सब भी उपकरण है, विषाद दन्य मूर्छा और कितने प्रकार के ये सब भाव हैं, ये सब भाव वहां पर भरे पड़े हैं राधिका जी। इसलिए बसती नगरी राधिका जी हैं, अर्थात तो ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो कृष्ण की सेवा के लिए वहां पर उपलब्ध नहीं, ऐसे श्रीमती जी सबका एक स्वरूप है, नगरी है। कृष्णमयी इतना ही नहीं, फिर बतलाया देवी कृष्णमयी, यह देवी शब्द का अर्थ हुआ, एक हुआ द्युति सुंदरी और द्यु धातु का अर्थ पूजा, पूजा में क्या हुआ पूजा की उपकरण इत्यादि सब, और द्यु माने आपन, आपन माने दुकान, ये दुकान, और द्यु धातु का अर्थ एक होता है क्रीड़ा, स्वयं क्रीड़ा की ऐसी क्रीड़ा युक्त हैं जो कृष्ण को भी मोहित कर देती है, ये सब के अर्थ में दिव्य हुआ, दिव धातु देवी, किंबा अथवा कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती, इसकी मैंने व्याख्या की कृष्णमयी। अब दूसरा, चलो दूसरा शब्द है कृष्णमयी, कृष्णमयी किसको कहा जाता है, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, तो ऐसे कृष्ण है, लोग इसका गलत अर्थ करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, एक आदमी ने कहा जे सिया राम मैं सब जग जानी, ये सब जितने बैठे हैं ये सिया राम है, सब सिया राम बैठे हुए हैं, कहे ज्ञान नहीं है, इसलिए सिया राम तो बस एक ही जोड़ी जुगल है दूसरी नहीं है, तो सिया राम क्यों लिख दिया तुलसीदास जी ने, अरे लिख दिया जरा विचार तो करो, जलमय हो गया, बाढ़ आई और जलमय हो गया, जलमय माने मैट शब्द का प्रचुर में अर्थ होता है, प्रचुर का अर्थ माने क्या, प्रचुरता है, क्या चीज की, उद्दीपना, जैसे बाढ़ आने पर सब जलमय होने पर वृक्ष लता गुलम नगर आदमी पुरुष भेड़ बकरी गाय सब उस बाढ़ में है, किंतु कोई भी पानी नहीं हुआ, सब जगह पानी भर गया ना, किंतु कोई भी उसमें से पानी हो गया, कोई भी पानी, कपड़े पानी से भीज गए जिधर चलो उधर ही पानी, नौका के अतिरिक्त तो कोई गति नहीं, उसी प्रकार से जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कि वो पानी, अर्थात तो राम और सीता जी नहीं है, एक आदमी नहीं है गलत अर्थ, सिया राम मैंने मैं बेकार का है, सिया राम सब जग जाने, अरे ये तो अद्वैतवादी अपराधी हैं कृष्ण के चरणों में, यह बात गलत है, सिया राम तो बस सबके आराध्य हैं, हनुमान कभी सिया राम हो गए, वो यदि हनुमान जी ने रावण को सिया राम मैं क्यों नहीं देखा, देखा किंतु सिया राम नहीं देखा, सिया राम मैं देखा, सबके स्वरूप में है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिसमें नहीं है। भक्त लोग उसी सत्ता, जैसे कि किसी ने मोर देखा, बस कृष्ण के मोर मुकुट का ध्यान आया, बस मूर्छित हो गए, ये है कृष्णमय, कृष्णमय भाव। सियाराम का यही तात्पर्य, शंकर जी से बढ़कर के सियाराम मैं कौन होगा, किंतु वो सीताराम बन गए। मैंने पूछा, अच्छा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं ये सियाराम है, सब जग जाना, सभी सियाराम। अच्छा ये बतलाओ, जैसे इसमें सिया कौन है और राम कौन है, वो सिया और राम दोनों एक हैं कि अलग अलग? तो अलग अलग। तो ये जो सियाराम देखा सियाराम में, वो सीता जी के रूप में देखता है ना राम के रूप में? तो दोनों के रूप में कैसे? इसलिए ये सब विचार गलत हैं, अच्छी तरह से समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जगत के लोगों को ये सब विचार की जरूरत नहीं है, बस एक फूल उनके चरण में दे दिया, बस भक्ति हो गई, बस मुक्ति मिल जाएगी, मैं ही राम बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। हनुमान जी कभी भी क्या है वो, ये सेवा छोड़ करके और कुछ नहीं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यही भाव जनी भूल की भी स्वप्न में भी ये नहीं भूल जाऊं कि रामचंद्र हमारे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक। ऐसे ये मत भूलो जो कृष्ण ही राधा ही सबके उपास्य हैं, कभी भी कृष्ण नहीं हो सकते, बस सेवक का अभिमान बना रहे। कृष्णमयी, कृष्णमयी किस लिए कहा गई है? कि जिनके अंदर और बाहर कृष्ण ही कृष्ण है, भीतर राधिका जी के भाव से हरे, बाहर में राधिका जी, कृष्ण उनके भीतर में है। जब ये आंख बंद करती हैं तो क्या होता है? सर्वत्र कृष्ण की स्फूर्ति होती है, कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति। कैसे मुझे स्नेह करते हैं, कैसे उरूपमान है, उनका गुण एक एक कैसा है। इसलिए आंख बंद कर, और जब आंख खोलती हैं तब क्या होता है? जो कुछ देखती हैं कृष्ण की स्फूर्ति होती है। जहां कोई पानी देखा, नदी देखा, तो क्या देखी? कृष्ण की क्रीड़ा की, ये बसती, ये जमुना जी, जमुना को देखा याद आया कृष्ण वहीं पर बैठे हुए, घाट पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? चलो हम लोग भी चलें, घर से, घर से एक घट ले लिया, घड़ा, और जल भरने के लिए चल दिया, किस लिए? जिधर देखती हैं, पेड़ों को देखा, पौधों को देखा, मयूर को देखा, किसी को देखा, बस कृष्ण की स्मृति आ जाती है। गोवर्धन को देखा, क्या स्फूर्ति आई? गोवर्धन में कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, राधा जी गोवर्धन के ऊपर में एकदम तीव्र धूप में एक नोकीले से पत्थर के ऊपर में खड़ी हैं, और बाप बड़ी प्रफुल्लित हैं, पैर एकदम जल रहा है, और नोकीली बर्फ, वो भाला या होता है ना, उसके नोकीले के समान है, और उनको होश ही नहीं है कहाँ क्या कर, बस गोवर्धन की याद आ गई। इस तरह से कोई भी चीज देख करके कृष्ण को बाहर से और अंतर से भावना, ये दोनों भीतर और बाहर कृष्ण ही दिखते हैं। किंतु ऐसा नहीं कि पेड़ भी कृष्ण हो गए, ऐसा नहीं, पेड़ों को देख करके क्या हुआ? ये सेवा कुंज के वृक्ष हैं, वहां पर कृष्ण होंगे, बस इसकी स्फूर्ति आ गई, देखा इसको कहां चली गई। इसलिए गाय को देखा, गाय को देखते ही बस कृष्ण की स्मृति, इसमें जरूर कृष्ण होंगे। ऐसे ही हिरण को देखा, हिरण किसको खोज रही है, किधर में जा रही है, इतनी वेग से जा रही है, किस लिए? कृष्ण गोचारण करने के लिए कहीं आ रही, इसलिए सब में उनकी बार और भीतर ऐसी भी, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, इसको कहते हैं कृष्णमय, अंदर भी बाहर भी। अथवा दूसरा अर्थ इसका कर रहे हैं, किसका? कृष्णमयी का। किंबा कृष्ण जो हैं, कृष्ण किंबा प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप क्या है? रसो वही सह, अर्थात प्रेम रसमय कृष्ण का स्वरूप है, और उनकी शक्ति है राधा जी, लादनी शक्ति हैं, इसलिए शक्ति शक्तिमान दोनों एक हुआ। तो कृष्ण है रसमय और राधा जी क्या हो जाएंगी? रसमय। कृष्ण हो गए राशेश्वर और राधिका जी राशेश्वरी हो जाएंगे। वो प्रेममय है तो ये प्रेममयी हो जाएंगे, दोनों एक हो गए, है ना? इसलिए ये कृष्णमयी है। कृष्ण वंशा पूर्ति करे आराधन। अब राधिका पर देवता कितना बच गया? बस आज इतना ही तक रखो, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। आज है कल फिर।
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्विषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। आदेवी काकू भरगत गदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भोवि दंडवत उद्भटाकि अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनम। अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदे कृतें दीवरम जड्डञ्जाबुडुरोचि साङ्गविदधतं पट्टम्बरस्य हस्या वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन्दाम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणाय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोस्मि। त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नये माम चरणान्तिके।
जगत में आविर्भाव आविर्भूत होने का कारण बतलाते हुए मुख्य क्या कारण था? राधा जी का भाव लेना। जैसे कि कृष्ण का आस्वादन वो करती हैं जिस भाव से, कृष्ण उसी चीज़ को ग्रहण किया। उस चीज़ के बतलाने के लिए पहले बतला दिया राधा जी क्या हैं, तो उन्होंने बतलाया कि वो लादनी शक्ति हैं और लादनी शक्ति का सार भाव प्रेम है, प्रेम का सार भाव महाभाव इत्यादि, उसी से बनी हुई श्रीमती राधिका जी हैं। बनी हुई का अर्थ ये मतलब लेना है जो कभी उससे बनी भी हैं, वो नित्य ही ऐसा है। इसलिए राधिका जी का स्वरूप इन पांच नामों में जो रूप गोस्वामी ने प्रकट किया है उसमें बतलाया गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। राधा जी का एक नाम है गोविंदानंदिनी और दूसरा नाम है राधा, तीसरा नाम है गोविंद मोहिनी, चौथा नाम है गोविंद सर्वस्व और पांचवा सर्वकांता शिरोमणि। ये पांच नाम रूप गोस्वामी ने उनका वर्णन किया है। गोविंद
नंदिनी आनंदिनी गोविंद को आनंद देने वाली, गोविंद जो विश्व ब्रह्मांड को आनंद देते हैं वो गोविंद है। गो गोपी गोप ब्राह्मण इंद्रिया वेद गाय ये सबको आनंदित करने वाले हैं और ये कृष्ण को आनंद देती है। इन्हीं के आनंद दिए जाने के कारण कृष्ण वो सबको आनंद देते हैं, इसलिए गोविंद आनंदिनी। राधा क्योंकि कृष्ण के द्वारा आराधित होती हैं, गोविंद को भी मोहित करने वाली हैं, गोविंद के सर्वस्व हैं और समस्त कामताओं में अर्थात तो कामना पूर्ण करने वालियों में भी कृष्ण की सबसे अधिक ये कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इसीलिए गौतमीय तंत्र में उनको बतलाया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। इसलिए एक राधा जी की आराधना करने से समस्त देवियों की आराधना हो जाती है, पृथक रूप में कोई आराधना की जरूरत नहीं होती। जैसे एक कृष्ण की सेवा करने से पूजा करने से आराधना करने से समस्त अवतारों की समस्त देवताओं की समस्त जीवों की सेवा करनी हो जाती है पृथक रूप में और कोई जरूरत नहीं। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, कृष्ण के प्रसन्न होने से सबकी तुष्टि हो जाती है। उसी प्रकार से राधा जी की सेवा करने से समस्त शक्तियों की आराधना करनी हो जाती है। इसलिए बतला रहे हैं देवी, कल इसकी व्याख्या मैंने की थी। देवी मैंने दो अर्थ बतलाया, दिव धातु का दो अर्थ बतलाया, सुशोभित होना, अत्यंत सुंदर परम सुंदरी हैं और कृष्ण पूजा क्रीड़ा की सहाय है, बसती नगरी है। जैसे नगरी इसको कहते हैं नगर नगरी, जहाँ पर तरह तरह की दुकानें हैं उसको सांसारिक दृष्टि से नगरी कहते हैं। उसी तरह से कृष्ण पूजा की जितने प्रकार के उपकरण हैं श्रद्धा से लेकर के भाव तक महाभाव तक जितनी भी सामग्री है इसी से पूजा होती है। केवल पुष्प चंदन रोली चावल दूर्वा हल्दी चंदन और पूजा की सामग्रियों रहने से पूजा नहीं होगी, उसके अंदर में प्रेम होना चाहिए। यदि प्रेम नहीं है तो उस पूजा का कोई भी मतलब नहीं है, और प्रेम रहता है तो इन चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं, रहे तो ठीक है नहीं रहे तो भी ठीक है, प्रेम की ज़रूरत है। भूख लगने पर ही भोजन होता है, भूख नहीं लगने पर भोजन की सामग्री रख देने से भी उसे कुछ भी नहीं होता, रुचि नहीं है। इसी तरह से कृष्ण को उससे यदि तृप्ति होती है, कृष्ण के प्रति यदि प्रेम है तो कृष्ण को भूख लगती है। इसलिए प्रेम यदि रहे तो उपासना का मतलब है। यदि नाम लेते हैं किंतु तनिक भी प्रेम नहीं है, तनिक भी रुचि नहीं है तो किस लिए लेते हैं? दो रुपये में लिया जा सकता है, एक तो लिया जाएगा इसलिए हमको दिखलाना है जो हम भक्त हैं इसलिए लोगों को दे करके माला ले लेते हैं और करते हैं, अन्यथा इसलिए भी ले सकते हैं हमारी रुचि नहीं है। तो भी ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि भगवान का नाम लेने से रुचि नहीं होने पर भी रुचि को पैदा कर लेता है, इसलिए भी नाम कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हो नाम करना ठीक है, लाभदायक है, किंतु यदि उसमें रुचि ही नहीं है, आदर नहीं है, अनादर के साथ में कोई लेता है तो भाई उससे लाभ नहीं होगा, उसमें अपराध हो जाने की संभावना है। वैष्णवों का निरादर करते हुए साधु संतों की निंदा करते हैं और इधर में नाम भी करते हैं तो ये नमा अपराध हो जाता है, ये पाप से भी बड़ा भयंकर है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कृष्ण की पूजा की सामग्री क्या है, श्रद्धा से आरंभ कर अंत में भाव महाभाव तक ये पूजा की सामग्री है। तो इसकी वो बसती है नगरी, ये समस्त चीजों को रखने वाली है। कृष्णमयी, जिनके बाहर में और भीतर में सब कुछ कृष्ण की उद्दीपना करने वाला होता है, भीतर में आंख बंद करती हैं तो सर्वत्र कृष्ण, और जब आंख खोलती हैं तो जितनी भी चीजें देखती हैं उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। कैसे? वृक्ष देखती हैं, अरे इसके किनारे खेले होंगे, इसके पर ऊपर में चढ़े होंगे, ये जो दिखता है मथुरा नगरी दिखती है उसमें कृष्ण अपने सखाओं के साथ में इधर उधर जाते थे। यहाँ की धूलि कृष्ण के चरणों से संलग्न है, कृष्ण की स्फूर्ति दी। यमुना देखते ही कृष्ण की स्मृति, इसी में खेले कूदे थे, इसमें स्नान करते थे सखाओं को देखकर। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की स्फूर्ति कराती है उनको। अथवा प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप, कृष्ण कैसे हैं? रसो वैसा, प्रेम रसमय हैं, उनकी शक्ति भी उनसे एक रूप है। एक रूप कहने का तात्पर्य क्या? उनकी शक्ति भी प्रेम रूप है, कृष्ण प्रेम रसमय हैं और वो कृष्ण प्रेम रसमयी हैं। तीसरा है राधिका नाम, राधिका के लिए बतला रहे हैं, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन। आराधना किसको कहते हैं? कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना ही आराधना है। कृष्ण जिससे प्रसन्न हो, उनको प्रीति हो, ऐसा यदि कोई करता है तो उनको भक्ति कहते हैं, आराधना कर। एक आदमी बहुत दूर देश से आया, बहुत जोर से प्यास लग रही है, गर्मी भी है, उसको पंखा भी चाहिए, किंतु पानी जरूरत है आगे ना पंखा जरूरत है, पंखे की भी जरूरत है। और वो यदि खुल करके कहता है जी जरा पानी लाओ, तो वो मांग रहा है जे पानी, तो क्या करेंगे? नहीं, हम पंखा ही चलाएंगे। अरे भाई पानी तो ले आओ, अभी बहुत आप थके हो, अभी ठहरिए, अभी पानी पीछे। यदि स्नेह से हो तो दूसरी बात, और नहीं तो जो कुछ कहते हैं उसी को करना ही ये आराधना है। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण की वांछा कामनाओं को पूर्ण करना ही आराधना है। जैसे साधारण लोगों के लिए बतलाएगा ये कृष्ण का नाम करो, कृष्ण की कथाओं को सुनो, ये आराधना होगी कि नहीं? यही आराधना है। विशेष करके कलयुग में भगवान का नाम करना, उनकी कथाओं को सुनना, ये सर्वोत्तम आराधना है। और अपने शुद्ध स्वरूप को, जो अभी हमारा पूर्व सिद्ध शरीर अभी आच्छादित हो गया है, ढक गया है, किसके द्वारा? माया के द्वारा। अनादि काल से या जब से जीव है तब से उसका सिद्ध स्वाभाविक धर्म ही है भगवान कृष्ण की सेवा। जीव का स्वरूप ही यह है, कृष्ण की सेवा करना। अब यदि माया के वजह से यह आच्छादित हो गया है, यदि हम शुद्ध रूप में भक्ति करते हैं, एकांतिक भक्ति करते हैं, एकांतिक माने क्या? कृष्ण की सेवा की वृद्धि हो, इसके अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है। हमको शुद्ध वैष्णवों का संग चाहिए, प्रभु हमको कृष्ण का भक्तों का संग दीजिए, ये भी ठीक है। इसके अनुकूल जो 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 कामनाएं हैं वो तो ठीक है, किंतु अपने सुख के लिए कोई भी संसारी कामना होगी तो उसकी एकांतिकता या अनन्य भक्ति समाप्त हो जाती, तब उसका धर्म विकसित नहीं होगा। और नहीं तो शुद्ध रूप में हम भगवान की सेवा करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, भगवान का नाम करेंगे, और जो शास्त्रों में बतलाया गया है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मूर्ति श्रद्धा श्रीमन सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग कृष्ण प्रेम जन्मा ये पाचर अल्प संग, जरूर उसका माया दूर हो जाएगी उसकी, और उसका जो स्वाभाविक जो धर्म है क्या नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम ये प्रकट हो जाएगा। तो अभी हम लोग कृष्ण की जो सेवा होती है आराधना, उसमें श्रीमती राधिका जी ही सबसे श्रेष्ठ उनकी आराधना करती, उनकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए उनका नाम है आराध्यति जह स राधिका। और कृष्णेन आराधिता, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं तब फिर वो राधा नाम हो जाता है, कृष्ण के द्वारा वो भी आराधित होती हैं, कृष्ण की भी आराधना करती हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, कभी वो आराधना करती हैं तो कभी वो आराधना करते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत में इसको बतलाया गया, अनाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामाने अदरह, अनाराधितो नूनं, राशस्थली हो रही थी, प्रारंभ हुआ, होने के बाद में कृष्ण सभी को समान रूप में सेवा का सुयोग दे रहे हैं, सब लोगों में ये भाव उठा जो हम स्वाधीन भर्तृका हैं, आज कृष्ण हमारी सेवा कर रहे हैं, हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही कृष्ण कर रहे हैं, इसलिए उनको सौभाग्यमत हुआ। सौभाग्यमत माने सौभाग्य का मत, संसार में सबसे स्त्रियों के लिए ये अधिक सौभाग्य का सूचक है जो पति उसके इच्छा रूप में चलता है, तो कृष्ण उसी समय में जैसा वो सोच रही है वैसा ही कर रहे हैं, उनके थकान को दूर कर रहे हैं, उनके श्वेत बिंदुओं को अपसारित कर रहे हैं और सेवाएं कर रहे हैं, वो जैसा चाहती हैं वैसा ही कृष्ण गान करते हैं, वैसे वेणु बजा रहे हैं, देख करके गोपियों को मद हो गया सौभाग्य का, एकमात्र में ही सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि वो दूसरों को नहीं देख रही कि कृष्ण दूसरी गोपियों के साथ में भी हैं, कृष्ण केवल मेरे साथ में है और गोपी के साथ में नहीं है, इसलिए उनका यह मद, मद माने क्या, मद किसको कहते हैं, अहंकार, गर्व कहते हैं, सौभाग्य का मद बढ़ गया। इसका सौभाग्य का मद कब होगा कहा जाएगा, इसका लक्षण क्या है, जब दूसरों को तुच्छ समझेंगे, कुछ नहीं बेकार, हमारे समान और कोई सौभाग्यवती नहीं, जब ऐसा होगा दूसरों की उपेक्षा करेंगे तब इसका नाम हुआ गर्व हुआ। तो उन लोगों ने ऐसा ही सोचा, ये और किसी के वशीभूत नहीं है, हमारे वशीभूत हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक रूपवती, मैं अधिक गुणवती और सब विषयों में श्रेष्ठ। कृष्ण ने देखा जी ये तो ऐसा हो रहा था तो मेरा रास्ता संभव नहीं, इसमें तो सभी को आना चाहिए, और उधर देखा क्या श्रीमती जी को क्या हुआ, तत् क्या तत् सौभगमदम भिक्षमानंच केशव जी, जो गोपियों के केश का प्रसादन करते हैं स्पेशली राधिका जी का, वो ऐसे प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, राधिका जी ने देखा जी थे ये तो हमारे पास में ही सबके पास में, इन्होंने दूसरे रूप में देखा, सबके पास में कृष्ण को देखा, अपने पास में भी देखा, इसलिए इनको सौभाग्य मद नहीं हुआ, मद हुआ उनको, और इनको क्या हुआ मान, कहते हैं झूठ, मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता, मैं तुम्हारे वशीभूत हूँ, और आज देख रहा हूँ अपने तरफ देखता हूँ तो हमारे पास, और दूसरे के पास में देखता हूँ तो दूसरे के पास में उसके सामने, इसीलिए इसको व्यूह नहीं, काय व्यूह नहीं बतलाया गया, गोपिया काय व्यूह की कल्पना नहीं कर सकती, दूसरों के दृष्टि में यह काय व्यूह हो सकता है या भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हो सकती है, किसके लिए, नारद इत्यादि के लिए, किंतु गोपियों के लिए क्या है, गोपियां देखती हैं और तो कोई गोपी देख नहीं रह गई, वो तो देखती है केवल हमारे पास में, और राधिका जी देख रही हैं बड़ी क्षिप्र गति से, जिधर जाता हूं जाती है दृष्टि झट यही चला जाता है उधर। यदि ऐश्वर्य देख लेती तो उनको कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि भगवान तो अघटन घटन पटेशी शक्ति वाले हैं, इसलिए इस चीज को नहीं देख रही। वो क्या देख रही, देखो कैसा धूर्त है कि अभी हमारे पास में है, जब उधर देखती हूँ तो देखता हूँ उसके भी पास में है, उसके भी पास में, सबके पास में है, इसलिए इनको कुछ वक्रता आ गई, मान आ गया, क्रोध कह दिया जाता जो क्रोध हुआ, जैसे यहाँ के लोगों में क्रोध होता है। क्रोध किस लिए नहीं कहा जाएगा कि उस जगत में क्रोध का कोई स्थान ही नहीं, प्रेम ही अपने वक्र स्थिति में और अधिक उन्नति स्थिति में जब प्रगाढ़ भाव आता है किसी के प्रति तो ये मान कहलाएगा, क्रोध नहीं। किंतु इस जगत में प्रेम नहीं, वो हिंसा आएगी, द्वेष आएगा, इसलिए यहां पर ये काम का भाव वहां है, इसलिए इस जगत में प्रेम नहीं क्रोध है, और उस जगत में क्रोध नहीं वो मान है, प्रेम ही का एक विवर्त है, इसलिए उनको हुआ मान। मान होने से वो मुख मोड़ लिया राधा जी ने, और वो तो पहले से सोच रहे थे कृष्ण हमारे वशीभूत केवल एक है, इसलिए उनको सौभाग्य मत, और इधर में इनको हो गया मान, रास हो गया बंद, राधिका जी रास को छोड़ करके हट गई, तुरथा अलग हो गई और किसी जगह में छिपने की चेष्टा की। कृष्ण ने देखा जैसे वो कहाँ गई राधिका जी, अरे जिसके लिए रास, जब वही नहीं है तो फिर किसके लिए रास, सत कोटि गोपी कृष्ण के चित्त को नहीं अवरुद्ध कर सकी, सबको उन्होंने छोड़ दिया सबके, और राधा जी को चुपचाप छिप करके राधा जी का अन्वेषण करने लगे। इन्होंने देखा जैसे अरे भाई कृष्ण कहाँ गया, देखा जैसे कृष्ण तो है नहीं, अब वो खोजने लगे, उनको पता नहीं कि राधा जी के साथ में है, उनको खोजने के लिए निकले हैं और उनको वो मिल गए ये नहीं देखा। आगे खोजते खोजते बावरी सी हो गई, बड़ी विचित्र स्थिति आई, यहाँ तक कि उनको लीला की अनुभूति होने लगी, लीला
अनुभव,
हाँ लीला के अनुभव सब होने लगे, लीला का अनुभव माने वो ऐसी तन्मयी हो गई, तन्मय एकदम हो करके जो बस समझने लगे कि मैं ही कृष्ण हूँ, और उनकी लीलाओं का संपादन कर। जैसे रूप गोस्वामी ने एक जगह लिखा है, इसी को एक तरह से प्रेम वैचित्र भी कहा जा सकता है। राधा जी विरह में उत्कंठित होकर के कृष्ण को पत्र देने के लिए बैठी, केले का पत्ता या भोज पत्र मंगा लिया, और अनार की कलियों से स्याही बनाई गई और सुकोमल मोय पंख से कलम बनी, और उसको लिखने लगी। लिख ले लिखते क्या लिखूं कृष्ण को, कृष्ण की चिंता करते करते एकदम उन्मत्त हो गए, बस वहां पर क लिखना है उनको, क उसके लिए एक बिंदु दिया और हाथ वहां रुक गई और एकदम भाव में विभोर हो गई। करते करते उन्होंने देखा जो ऐसी भाव आया कि वो अपने को समझने लगी जो मैं ही कृष्ण हूँ, और उस फुटकी को बिंदु को उन्होंने क के बदले र बनाना आरंभ किया, माने राधे, और करते करते सवेरा हो गया, आंखों के आंसुओं से भीग गया, ललिता जी के हाथों में वैसे ही गदगद होकर के भाव में विपरीत हो विभोर होकर के उन्होंने दे दिया। उन्होंने उसको भोज पत्र को मोड़ दिया, उस पर हल्दी और सब चीज़ों को मंगल सूचक चीज़ों से दे करके और मृणाल अर्थात कमल की डंडी की इससे उसको रंग करके और उसको बांध करके और कृष्ण के हाथों में पहुंचवा दिया। कृष्ण ने खोला और खोल करके क्या देख रहे हैं, देखा एक वो पड़ी हुई है बिंदु, वो थोड़ी सी ऐसे सरक रही है, और उनके अंदर में ये सब सारी भावनाएं कि ये हम आपको हमको पत्र लिख रही थी, लिखते 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 आविष्ट होकर के एकदम तन्मय होकर के हम अपने को ही एकदम समझ लिया कृष्ण और राधा जी को ये पत्र देने। जितनी बातें उन्होंने सोची सब एक एक करके उनके आए, और उन्हीं अश्रु बिंदुओं में कृष्ण के भी अश्रु बिंद मिल करके वो पत्र पूरा हो गया। एक बार ऐसी लीला दिखलाया था वृंदावन में, सब लोग एकदम विभोर हो गए। इसलिए ये कह रही हैं राधिका जी, हाँ अन्य राधिता, हाँ फिर इसके बाद में घूम रही हैं, पेड़ों से पूछा, पौधों से पूछा, होश नहीं रहा। अरे ये पेड़ कैसे बात करेंगे, बड़े बड़े पेड़ों को कहा जी ये कृष्ण के सखा हैं, उनसे पूछ रही हैं। अरे ये कृष्ण का सखा कैसे बतलाएगा। वृंदा को देखा, तुलसी का पौधा, उनसे पूछने लगी, बड़ी खुश है और उस पर भ्रमर गुंजार कर, अरे तू बड़ी खुश है, बतलाओ तो, जरूर तुमको कृष्ण स्पर्श करके गए हैं, सबको छोड़ सकते हैं, तुमको छोड़ नहीं सकते, इसलिए जरूर तुमसे मिले हुए, तुम बतलाओ जी कहाँ। किंतु वो चुपचाप रही, अजय वो ये कृष्ण पक्षी है, भाव में भी भोर हो गई, ये बातचीत नहीं कर सकते। इसी तरह से लताओं से और हिरणों से पूछती गई, अंत में उन्होंने देखा श्री कृष्ण का छोटा सा सुंदर चरण, और उसमें कृष्ण के चरणों में जो अंकुश ध्वज वज्र अंकुश पताका कलश इत्यादि रहते हैं, उनको देखा, देख करके अरे ये तो कृष्ण इधर ही गए हैं, उधर ही चल पड़ी, और सबको कुछ आशा हुई ये कृष्ण मिलेंगे आगे हैं। किंतु उनको विस्मय हुआ जब देखा एक और पैर थोड़ी देर के बाद में उभरा और कृष्ण के दोनों पैरों के बीच में, अरे ये किसका पैर। इतने में कृष्ण की स्वपक्ष वाली राधा जी की स्वपक्ष वाली सखियों ने देखा और एकदम एक दूसरों को इशारा करने, अरे ये देखो तो हमारी सखी भी इसी के साथ में है, अकेला नहीं है ये, उनको लेकर के गया। विपक्ष वाली कह रही हैं अनयाराधित हो, अरे निश्चित रूप में ये जो सखी है गई है ये नारायण की निश्चित रूप में आराधना की है, इसलिए कह रहे हैं अनयाराधितो नूनं निश्चित रूपेण न्यूनम, हरि ईश्वर भगवान आराधितो। तीन उनके लिए विशेषण आया, क्या भगवान जो समस्त सिद्धियों को देने वाले समस्त भगों के से युक्त हैं, ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य, और उसमें बड़े दयालु हैं, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए मालूम होता है कि ये जो गई है किशोरी इनके साथ में गोविंद के साथ में जरूर नारायण की सबसे अधिक सेवा की होगी, भगवान की आराधना की। भगवान अघटन फटन पटेशी शक्ति वाले जिसको कोई भी वर देने में समर्थ हो, ईश्वर वरदाता, और हरि जगत को आकर्षण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु की सेवा नारायण की सेवा की है इन्होंने, इसीलिए जन्नो बिहाय गोविंदा जत नह, नह माने हमें, हम और जो गोपियां हैं सबको छोड़ करके वो गोविंद प्रीतो जाम अनयतरह, इस सौभाग्यशालिनी को अपने साथ में एकांतिक स्थानों में उसकी सेवा करने के लिए, उसका मान भंग करने के लिए ले गए। दूसरा एक और अर्थ होगा अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर जन्नो बिहाय गोविंद प्रीतो जाम अनयतरह, ये दो जो गोविंद हैं ये गोविंद की सबसे अधिक सेवा की है। यहां पर भगवान माने क्या, कामों को पूर्ण करने वाले, कामों को पूर्ण करने वाले, और परम सुंदर श्री युक्त हैं ये गोविंद, और हरि माने जो आकर्षक हैं सबसे आकर्षक, और ईश्वर माने कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ये कौन है। गोपियों की कामना क्या है, कृष्ण की सेवा। अच्छा, सबसे आकर्षक कौन है, कृष्ण ही है, और भगवत्ता की शेष सीमा ये कृष्ण भगवान नहीं, यहाँ पर काम को देने वाले केवल अर्थ में भगवान, ये भी कोष का अर्थ है, ऐसे जो गोविंद है, ऐसे गोविंद को सब प्रकार से प्रसन्न करने वाली ये है, इसीलिए उसको अपने साथ में ये लेकर के गए हैं। ये उसका गंभीर और रहस्यपूर्ण अर्थ है, और साधारण लोगों के लिए वो अर्थ है। यह नारायण की आराधना इसने की, वही भगवान हैं, वही ईश्वर हैं, वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण कर किया, और उनकी कृपा से ये कृष्ण का संग इनको मिला है, और कृष्ण उसको लेकर के गए हैं। इसलिए ये क्या हुआ, इसका ये तात्पर्य हुआ, अतएव सर्व पूज्य, कृष्ण की भी पूज्य है, कृष्ण उनको ले गए। जब कृष्ण के ही पूज्य हैं तो और लोगों की तो बात क्या, और किसी के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया कृष्ण ने, इसलिए ये सबके आराध्य हैं। परम देवता, जब कृष्ण ही इनकी सेवा करते हैं, कृष्ण ही आराधिता हैं, तो दूसरों के लिए तो क्या बात ही क्या। जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद भिष्य मुखई रक्षितो न सहसा पुरुष तस्य सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तंग राधिका परिचरामि कदा। ना ये तो नहीं, तंग राधिका स्मरामि, मैं राधिका जी के चरण कमलों के चूर्ण की मैं आराधना करता हूँ। कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा इत्यादि को कृष्ण नहीं मिलते, वो श्रुतियां और ब्रह्मा शंकर इत्यादि खोजते रहते हैं, किंतु यदि कोई ये कहे मैं राधिका जी के चरणों की सेविका की सेविका की सेविकाओं का मैं सेविका हूँ, उनकी चरण की रेणु होने योग्य हूँ मैं, वो हमको चरण के रेणु के रूप में ग्रहण करें, तो कृष्ण उस पर बिना किसी कहे हुए उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ये परम देवता स्वरूप है राधिका जी। सर्वपालिका, कृष्ण सब जगत के पालक हैं, किंतु पालन करते हैं किस शक्ति से, ये हलादनी संबित और संधनी देकर के, तो ये राधिका जी का स्वरूप है, इसलिए सबकी पालिका यही है। सर्व जगतेर माता, माता माने क्या, माता पालन पोषण करने वाली, तात्राण करने वाली, ऐसी जो माताएं, ये माता भी प्रेम देने के वजह से। सर्व लक्ष्मी शब्द पूर्वे लिखिया करिया छिप व्याख्यान, सर्व लक्ष्मी किसको कहा गया है, गोपियों को, कैसे उन्होंने किया है, उन्होंने ब्रह्म संहिता का श्लोक करके पहले दिखलाया है। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभि रभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत से ब्रह्म संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम। इसके द्वारा अथवा यह वो है ना, वही ब्रह्म संहिता का गोपियों का कृष्ण की कला है, आनंद चिन्ह में रस प्रतिभाविता भी ताभिज एव रूप जो रूप तया कला, इन गोपियों के साथ में नित्य गोलोक धाम में जो विराजमान हैं, ये कृष्ण की स्वरूप हैं, सच्चिदानंद कृष्ण है, ये भी वैसे ही हैं, कृष्ण के रूप तया जैसे कृष्ण का शिव विग्रह है वैसे ही इनका भी शिव विग्रह है, ऐसे गोपियों के साथ में सब समय निवास करते हैं। और जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा स्वस्थ, अरे जहाँ पर इंदिरा वैकुंठ की लक्ष्मी जहाँ पर की सेवा कर रही हैं, जो ब्रह्मा इत्यादि की आराध्या हैं, किनकी सेवा कर रही है, ब्रज की, किस लिए, गोपियाँ यहाँ पर उतरती हैं क्रीड़ा करती हैं उस ब्रज की धाम की सेवा कर रही हैं, तो गोपियों की तो बात छोड़। इसलिए सर्वलक्ष्मी से राधिका जी का ही यहाँ पर बोध किया गया है। सर्वलक्ष्मी गणेती हो हन अधिष्ठान, इन्हीं से समस्त सारी जितनी लक्ष्मियां हैं सब निकलती हैं, इसलिए इन्हीं से ब्रज में सारी गोपियां पूर्व दोनों में रुक्मिणी सद्भामा इत्यादि प्रियाएं और वैकुंठ में ये सब लक्ष्मियां इन्हीं राधा जी से ही निकलती हैं, और इन्हीं की छाया के रूप में दुर्गा काली भद्रा विंध्याचलवासिनी इत्यादि ये सब कृष्णकांता का कह रहे हैं अर्थ किंबा अच्छा सर्वलक्ष्मीमयी का एक और भी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य, कृष्ण के छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं, तार अधिष्ठात्री उन उन गुणों के ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य इत्यादि के अधिष्ठात्री देवी कौन है? ये राधिका जी हैं, इसलिए ये सर्वशक्ति वर्ज्य है, सबसे श्रेष्ठ है। अब पांचवा है सर्वकांति, ना सर्वकांति सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहां थे जितना सौंदर्य है जो कुछ कांति है वो सब राधिका जी में प्रविष्ट है। अभी एक विश्व सुंदरी का सुनते हैं, कोई सिलेक्शन हुआ था कहीं इधर जापान या कहाँ मनीला कहीं हुआ, उसमें विश्व भर की सारी सुंदरी लड़कियां किशोरियां आई, एक एक से सुंदरी, जिसमें चार को सिलेक्शन किया और उन चारों में से अब फिर एक को सबसे श्रेष्ठ चुनना है, किंतु रूप में सभी बराबर हैं। अब उन चारों को तो एक साथ लिया नहीं जाएगा, तो उन लोगों से कुछ प्रश्न किए, तुम सबसे अच्छा क्या समझती हो, अपने जीवन में क्या करेगी, तुमको अच्छा क्या लगता है? एक ने कहा जी हमको अच्छा लगता है खूब सुंदर रूप में रहें, दूसरों को सुंदर रूप में रखें, किसी ने कुछ कहा, और एक ने भारत की जो थी लड़की उसने कहा जो मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ।